गलाटियंस पॉल एक प्रेरित गलातिया की कलीसियाओं के लिए हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिले जिन्होंने हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें वर्तमान बुरे युग से बचाने के लिए हमारे पापों के लिए स्वयं को दे दिया जिनकी महिमा युगानुयुग होती रहे। वापस मुड़ना। मुझे आश्चर्य है कि आप इतनी जल्दी उसे त्याग रहे हैं जिसने आपको मसीह की कृपा से बुलाया है और एक अलग सुसमाचार की ओर मुड़ रहे हैं जो वास्तव में कोई सुसमाचार नहीं है। जाहिर तौर पर कुछ लोग आपको भ्रम में डाल रहे हैं और मसीह के सुसमाचार को विकृत करने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु यदि हम या स्वर्ग से आया कोई दूत जो सुसमाचार हमने तुम्हें सुनाया है उससे भिन्न कोई सुसमाचार प्रचार करे तो वह सदा दोषी ठहराया जाए, जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं। इसलिए अब मैं फिर से कहता हूँ, यदि कोई तुम्हें उस सुसमाचार के अलावा जो तुमने स्वीकार किया है उपदेश दे रहा है तो उसे सदा दोषी ठहराया जाए। हे भाइयों, मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो कि जिस सुसमाचार का मैंने प्रचार किया वह कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। यह न तो मैंने किसी मनुष्य से पाया और न मुझे सिखाया गया, बल्कि मैंने इसे यीशु मसीह से रहस्योद्घाटन द्वारा प्राप्त किया। संकलक की टिप्पणी, मसीह के शरीर में कोई भी जिसने उसे और उसके उद्धार के प्रस्ताव को त्याग दिया है अब बचाई गई स्थिति में नहीं है, लेकिन वे पश्चाताप कर सकते हैं और उसके पास लौट सकते हैं क्योंकि वह हमेशा उन लोगों का स्वागत करता है जो उसकी ओर मुड़ते हैं। यह वह संदेश है जो परमेश्वर ने इसराइलियों को दिया था, पश्चाताप करो और लौट आओ। टिप्पणी समाप्त करें। अन्य जातियों के लिए सुसमाचार। तुमने यहूदी धर्म में मेरी पिछली जीवन शैली के बारे में सुना है कि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को कितनी तीव्रता से सताया और उसे नष्ट करने की कोशिश की, परंतु जब परमेश्वर ने, जिसने मुझे जन्म से ही अलग किया और अपने अनुग्रह से बुलाया, अपने पुत्र को मुझ में प्रकट करना चाहा कि मैं अन्य जातियों में उसका प्रचार कर सकूं, तो मैंने किसी से सम्मति न की और न यरूशलेम को गया। उन लोगों को देखें जो मुझसे पहले प्रेरित थे, लेकिन मैं तुरंत अरब चला गया और बाद में दमिश्क लौट आया। फिर 3 वर्ष के बाद मैं पतरस से मिलने के लिए यरूशलेम गया और 15 दिन तक उसके पास रहा। मैंने अन्य प्रेरितों में से किसी को नहीं देखा, केवल प्रभु के भाई जेम्स को। संकलक की टिप्पणी, कोई व्यक्ति भ्रमणशील प्रचारक बने बिना भी मसीह की घोषणा कर सकता है। टिप्पणी समाप्त करें। 14 साल बाद मैं फिर यरूशलेम गया, इस बार बरनबास के साथ। मैं टाइटस को भी साथ ले गया। मैं एक रहस्योद्धाटन के जवाब में गया और उनके सामने वह सुसमाचार रखा जो मैं अन्य जातियों के बीच प्रचार करता हूँ, परंतु मैंने ऐसा उन लोगों के साथ अकेले में किया जो नेता प्रतीत होते थे, इस डर से कि मैं व्यर्थ दौड़ रहा था या दौड़ चुका था। फिर भी टाइटस को, जो मेरे साथ था, खतना कराने के लिए मजबूर नहीं किया गया, भले ही वह यूनानी था। यह मामला इसलिए उठा क्योंकि कुछ झूठे भाई मसीह यीशु में हमें जो आज़ादी मिली है उसकी जासूसी करने और हमें गुलाम बनाने के लिए हमारे बीच में घुस आए थे। हमने एक पल के लिए भी उनकी बात नहीं मानी ताकि सुसमाचार की सच्चाई तुम्हारे साथ बनी रहे। संकलक की टिप्पणी, उस व्यक्ति को छोड़कर कौन झूठे भाई हो सकता है जो मसीह के शरीर में था, लेकिन अब मसीह के उद्धार के शुभ समाचार के विपरीत एक शिक्षा की घोषणा करता है, यहाँ तक कि मसीह को भगवान के रूप में नकारता है। टिप्पणी समाप्त करें। जहाँ तक उन लोगों की बात है जो महत्वपूर्ण लगते थे, वे जो भी थे, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान बाहरी रूप से न्याय नहीं करते, उन लोगों ने मेरे संदेश में कुछ भी नहीं जोड़ा। इसके विपरीत उन्होंने देखा कि मुझे अन्य जातियों को सुसमाचार प्रचार करने का काम सौंपा गया था, जैसे पतरस को यहूदियों को दिया गया था, क्योंकि परमेश्वर, जो यहूदियों के लिए एक प्रेरित के रूप में पतरस की सेवकाई में कार्य कर रहा था, वह अन्य जातियों के लिए एक प्रेरित के रूप में मेरी सेवकाई में भी कार्य कर रहा था। जेम्स, पीटर और जॉन, जो स्तंभ माने जाते हैं, ने मुझे और बरनबास को संगति का दाहिना हाथ दिया जब उन्होंने मुझे दिए गए अनुग्रह को पहचाना। वे इस बात पर सहमत हुए कि हमें अन्य जातियों के पास जाना चाहिए और उन्हें यहूदियों के पास। उन्होंने बस इतना ही पूछा था कि हमें गरीबों को याद रखना जारी रखना चाहिए। यही वह चीज है जिसे करने के लिए मैं उत्सुक था। जब पत्रस अंताकिया में आया तो मैंने उसके मुंह पर उसका विरोध किया, क्योंकि वह स्पष्ट रूप से गलत था। जेम्स की ओर से कुछ लोगों के आने से पहले वह अन्य जातियों के साथ भोजन करता था, परंतु जब वे पहुंचे तो वह पीछे हटने लगा और अपने आप को अन्य जातियों से अलग करने लगा, क्योंकि वह उन लोगों से डरता था जो खतना किए हुए थे। दूसरे यहूदी भी उसके कपट में शामिल हो गए, यहां तक कि बरनबास भी उनके कपट के कारण भटक गया। जब मैंने देखा कि वे सुसमाचार की सच्चाई के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं, तो मैंने उन सब के सामने पत्रस से कहा, तू यहूदी है तो भी यहूदी के समान नहीं, अन्य जाति के समान रहता है। फिर यह कैसा कि आप अन्य जातियों को यहूदी रीति रिवाजों का पालन करने के लिए मजबूर करते हैं? अधिनियम 15 का संदर्भ लें। संकलक की टिप्पणी, पाप का सामना किया जाना चाहिए, भले ही पापी कितना भी महत्वपूर्ण क्यों न हो, चाहे वह बड़ा वित्तीय योगदान करता हो, माता पिता, जीवन साथी, बच्चा, उपदेशक या पादरी। टिप्पणी समाप्त करें। आस्था या कानून द्वारा उचित ठहराया गया। हम जो जन्म से यहूदी हैं और गैर यहूदी पापी नहीं हैं, जानते हैं कि एक व्यक्ति को कानून का पालन करने, आवश्यक समझे जाने वाले अनुष्ठान कार्यों का प्रदर्शन द्वारा उचित नहीं ठहराया जाता है, बल्कि यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा उचित ठहराया जाता है। सो हमने भी मसीह यीशु पर विश्वास किया है कि हम व्यवस्था के मानने से नहीं, परंतु मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरें, क्योंकि व्यवस्था के मानने से कोई निर्दोष न ठहरेगा। यदि जब हम मसीह में न्यायसंगत होने का प्रयास करते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि हम स्वयं पापी हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि मसीह पाप को बढ़ावा देता है? बिल्कुल नहीं। यदि मैंने जो नष्ट किया है उसे फिर से बनाता हूं, तो मैं साबित करता हूं कि मैं कानून तोड़ने वाला हूं, क्योंकि इसके माध्यम से कानून, मैं कानून के लिए मर गया ताकि मैं भगवान के लिए जी सकूं। मुझे मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है और मैं अब जीवित नहीं हूं, लेकिन मसीह मेरे शरीर में रहता है। मैं भगवान के पुत्र में विश्वास से जीता हूं, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को अलग नहीं रखता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता प्राप्त की जा सकती है तो मसीह व्यर्थ ही मर गया। संकलक की टिप्पणी, एक ईसाई पापी बन सकता है, इसलिए उसे बदलना, पश्चाताप करना चाहिए और भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए। टिप्पणी समाप्त करें। संकलक की टिप्पणी, जब कोई पाप के लिए क्षमा मांगते हुए मर जाता है, उसकी मृत्यु में उसे दफना दिया जाता है, बपतिस्मा दिया जाता है, अर्थात विसर्जित कर दिया जाता है, भगवान द्वारा उठाया जाता है और मसीह के राज्य में डाल दिया जाता है, तो उसे मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है। टिप्पणी समाप्त करें। क्या तुम्हें व्यवस्था का पालन करने से या जो कुछ तुमने सुना उस पर विश्वास करने से आत्मा प्राप्त हुआ? आत्मा से शुरुआत करने के बाद क्या अब आप मानवीय प्रयास से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने, अपना लक्ष्य अर्जित करने का प्रयास कर रहे हैं? क्या परमेश्वर आपको अपनी आत्मा देता है और आपके बीच चमत्कार करता है क्योंकि आप कानून का पालन करते हैं, या इसलिए कि आप जो कुछ आपने सुना है उस पर विश्वास करते हैं? इब्राहिम पर विचार करें, जो मूसा के कानून से 400 साल पहले जीवित था, वह ईश्वर में विश्वास करता था और अपने विश्वास पर कार्य करता था, और इसे धार्मिकता के रूप में श्रेय दिया गया। तो समझो कि जो विश्वास करते हैं वे इब्राहिम की संतान हैं। पवित्र शास्त्र ने पहले से ही अनुमान लगा लिया था कि ईश्वर विश्वास के द्वारा अन्य जातियों को न्यायसंगत ठहराएगा, और इब्राहीम को पहले से ही सुसमाचार की घोषणा की, सभी राष्ट्र तुम्हारे माध्यम से धन्य होंगे। इसलिए जिनके पास विश्वास है, वे इब्राहीम विश्वास के आदमी के साथ धन्य हैं। जो लोग व्यवस्था का पालन करने पर भरोसा करते हैं, वे शाप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है, शापित है वह हर कोई जो व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हर बात को नहीं करता। स्पष्टतः व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के सामने कोई भी धर्मी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि धर्मी लोग विश्वास से जीवित रहेंगे, कानून आस्था पर आधारित नहीं है। इसके विपरीत जो मनुष्य ये काम करेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। मसीह ने हमारे लिए अभिशाप बनकर हमें व्यवस्था के अभिशाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह शापित है। उसने हमें छुड़ाया ताकि इब्राहीम को दिया गया आशीर्वाद मसीह यीशु के माध्यम से अन्य जातियों तक पहुँचे, ताकि हम विश्वास के द्वारा आत्मा का वादा प्राप्त कर सकें। संकलक की टिप्पणी, किसी के कार्य किसी आदेश को पूरा करने के कर्तव्य के कारण या मसीह के प्रति प्रेम और उसकी क्षमा के कारण हो सकते हैं। टिप्पणी समाप्त करें। भाइयों, मैं रोजमर्रा की जिंदगी से एक उदाहरण लेता हूँ। जिस प्रकार विधिवत स्थापित की गई मानव वाचा को कोई भी अलग नहीं कर सकता या उसमें कुछ जोड़ नहीं सकता, वैसा ही इस मामले में भी है। ये वादे इब्राहीम और उसके वंश से कहे गए थे। पवित्र शास्त्र यह नहीं कहता है कि और बीज को, जिसका अर्थ बहुत से लोग हैं, बल्कि और अपने बीज को कहता है, जिसका अर्थ है एक व्यक्ति जो मसीह है। मेरे कहने का मतलब यह है, 430 साल बाद पेश किया गया कानून ईश्वर द्वारा पहले स्थापित की गई वाचा को रद्द नहीं करता है और इस प्रकार वादे को खत्म कर देता है। क्योंकि यदि उत्तराधिकार व्यवस्था पर निर्भर है तो फिर वह प्रतिज्ञा पर निर्भर नहीं रहता, परंतु परमेश्वर ने अपनी कृपा से इसे इब्राहीम को प्रतिज्ञा के द्वारा दे दिया। फिर कानून का उद्देश्य क्या था? इसे अपराधों के कारण तब तक जोड़ा गया जब तक कि वह वंश जिसके बारे में प्रतिज्ञा का उल्लेख नहीं किया गया था नहीं आया। कानून को एक मध्यस्थ द्वारा स्वर्गदूतों के माध्यम से लागू किया गया था। हालांकि एक मध्यस्थ केवल एक पक्ष का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, लेकिन भगवान एक है। तो क्या कानून ईश्वर के वादों के विपरीत है? कदापि नहीं। क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था दी गई होती जो जीवन प्रदान कर सकती, तो व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता अवश्य आती। लेकिन धर्मग्रंथ घोषणा करता है कि पूरी दुनिया पाप का कैदी है, ताकि यीशु मसीह में विश्वास के माध्यम से जो वादा किया गया था वह उन लोगों को दिया जा सके जो विश्वास करते हैं। इस विश्वास के आने से पहले हमें कानून द्वारा बंदी बना लिया गया था, जब तक कि विश्वास प्रकट न हो जाए तब तक बंद रखा जाता था। इसलिए हमें मसीह तक ले जाने के लिए कानून को प्रभारी बनाया गया, ताकि हम विश्वास के द्वारा न्यायसंगत हो सकें। अब जब विश्वास आ गया है तो हम अब कानून की निगरानी में नहीं हैं। भगवान के पुत्र, तुम सब मसीह यीशु में विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर के पुत्र हो, विश्वास के द्वारा नहीं बल्कि किसी आवश्यकता का पालन करके, क्योंकि वह एक आज्ञा थी, क्योंकि तुम सब ने जो मसीह में बपतिस्मा लिया है मसीह को पहन लिया है। वहां न कोई यहूदी है, न यूनानी, न दास, न स्वतंत्र, न पुरुष, न स्त्री, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहीम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस हो। मैं जो कह रहा हूं वह यह है कि जब तक उत्तराधिकारी बच्चा है वह गुलाम से अलग नहीं है, हालांकि वह पूरी संपत्ति का मालिक है। वह अपने पिता द्वारा निर्धारित समय तक अभिभावकों और ट्रस्टियों के अधीन रहता है। इसी तरह जब हम बच्चे थे हम दुनिया के बुनियादी सिद्धांतों के तहत गुलामी में थे, परंतु जब समय पूरा आ गया तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को, जो स्त्री से उत्पन्न हुआ और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न होकर व्यवस्था के अधीन लोगों को छुड़ाने के लिए भेजा, कि हम पुत्रों का पूरा अधिकार प्राप्त करें। क्योंकि तुम पुत्र हो, परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को हमारे हृदयों में भेजा, अर्थात वह आत्मा जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारती है। अत अब तू दास नहीं परंतु पुत्र है, और चूंकि तू पुत्र है इसलिए परमेश्वर ने तुझे वारिस भी ठहराया है। संकलक की टिप्पणी, ईसा मसीह, ईश्वर के राज्य और ईसा मसीह में लोगों के बीच कोई अंतर नहीं है। यीशु राष्ट्रीयता, नस्ल या धन को नहीं देखते, यीशु हृदय को देखता है। टिप्पणी समाप्त करें। पहले जब तुम परमेश्वर को नहीं जानते थे तो उन लोगों के दास थे जो स्वभाव से ही परमेश्वर नहीं हैं। लेकिन अब जब आप ईश्वर को जानते हैं, या यूं कहें कि ईश्वर द्वारा जाने जाते हैं, तो ऐसा कैसे है कि आप उन कमजोर और दयनीय सिद्धांतों की ओर लौट रहे हैं। इसलिए एक ईसाई पीछे मुड़ सकता है और खो सकता है गुलाम। क्या आप फिर से उनका गुलाम बनना चाहते हैं? आप विशेष दिनों और महीनों और ऋतुओं और वर्षों का अवलोकन कर रहे हैं। मुझे डर है कि किसी तरह मैंने आप पर अपना प्रयास बर्बाद कर दिया है। मुझे बताओ, तुम जो व्यवस्था के अधीन रहना चाहते हो, क्या तुम नहीं जानते कि व्यवस्था क्या कहती है? क्योंकि लिखा है कि इब्राहीम के दो बेटे थे, एक दासी से और दूसरा स्वतंत्र स्त्री से। दासी से उसका पुत्र साधारण रीति से पैदा हुआ, परंतु स्वतंत्र स्त्री से उसका पुत्र एक प्रतिज्ञा के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ। अब हे भाइयों, तुम इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान हो। उस समय सामान्य रीति से उत्पन्न पुत्र ने आत्मा की शक्ति से उत्पन्न पुत्र को सताया। अब भी वैसा ही है। लेकिन धर्मग्रंथ क्या कहता है? दासी और उसके बेटे से छुटकारा पाएं, क्योंकि दासी का बेटा स्वतंत्र महिला के बेटे के साथ विरासत में कभी हिस्सा नहीं लेगा। इसलिए हे भाइयों, हम दासी की नहीं परंतु स्वतंत्र स्त्री की संतान हैं। यह स्वतंत्रता के लिए है कि मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है। तो फिर दृढ़ रहो और अपने आप को फिर से गुलामी के बोझ तले दबने मत दो। संकलक की टिप्पणी, आप पीछे मुड़ रहे हैं, का अर्थ है कि आप अब मसीह में नहीं हैं। मेरे शब्दों को अंकित कर लो। मैं पॉल आपको बताता हूं कि जो लोग कानून द्वारा उचित ठहराए जाने की कोशिश कर रहे हैं वे मसीह से अलग हो गए हैं, तुम अनुग्रह से दूर हो गए हो। परंतु विश्वास के द्वारा हम आत्मा के द्वारा उस धार्मिकता की उत्सुकता से बाँट जोहते हैं जिसकी हमें आशा है। क्योंकि मसीह यीशु में केवल एक चीज जो मायने रखती है वह है विश्वास, जो स्वयं को प्रेम के माध्यम से व्यक्त करता है। टिप्पणी समाप्त करें। संकलक की टिप्पणी, आप अनुग्रह से दूर हो गए हैं, मसीह से दूर हो गए हैं। क्या यह सत्य या असत्य कथन है? यदि झूठ है तो किस पर भरोसा किया जा सकता है? टिप्पणी समाप्त करें। मेरे भाइयों, तुम्हें स्वतंत्र होने के लिए बुलाया गया था, परंतु अपनी स्वतंत्रता का उपयोग पापी स्वभाव में लिप्त होने के लिए न करें, बल्कि प्रेम से एक दूसरे की सेवा करो। पूरे कानून को एक ही आदेश में सारांशित किया गया है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। यदि तुम एक दूसरे को काटते और खाते रहोगे तो सावधान रहो, नहीं तो तुम एक दूसरे के द्वारा नष्ट हो जाओगे। तो मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार जियो और तुम पापी स्वभाव की इच्छाओं को पूरा नहीं करोगे। क्योंकि पापी स्वभाव आत्मा के विरुद्ध बातें चाहता है और आत्मा पापी स्वभाव के विरुद्ध बातें चाहता है। वे आपस में झगड़ते हैं ताकि तुम वह न करो जो तुम चाहते हो। परंतु यदि तुम आत्मा के द्वारा चलाए जाते हो तो तुम व्यवस्था के अधीन नहीं हो। पापी प्रकृति के कार्य स्पष्ट हैं, यौन अनैतिकता, अशुद्धता और व्यभिचार, मूर्ति पूजा और जादू टोना, घृणा, कलह, ईर्ष्या, क्रोध के दौरे, स्वार्थी महत्वाकांक्षा, मतभेद, गुट और ईर्ष्या, शराबीपन, तांडव इत्यादि। मैं आपको गैलाटियन ईसाइयों को चेतावनी देता हूँ, जैसा कि मैंने पहले किया था, कि जो लोग इस तरह रहते हैं उन्हें परमेश्वर का राज्य विरासत में नहीं मिलेगा। संकलक की टिप्पणी, पापपूर्ण प्रकृति के ये कार्य ईसाइयों के बीच पॉल के समय से लेकर आज तक मौजूद थे, इसलिए उनकी चेतावनी सभी पीढ़ियों के सभी ईसाइयों पर लागू होती है। टिप्पणी समाप्त करें। परंतु आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसी चीजों के विरुद्ध कोई भी कानून नहीं है। जो लोग मसीह यीशु के हैं, उन्होंने पापी स्वभाव को उसके जुनून और इच्छाओं सहित क्रूस पर चढ़ा दिया है। चूंकि हम आत्मा के द्वारा जीते हैं, तो आइए हम आत्मा के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहें। आइए हम अभिमानी न बने, एक दूसरे को भड़काएं और ईर्ष्या न करें। पुनर्स्थापन। हे भाइयों, यदि कोई पाप में फंसा हो तो तुम जो आध्यात्मिक हो उसे धीरे से लौटा दो, लेकिन अपने आप पर नजर रखें, नहीं तो आप भी लालच में पड़ सकते हैं। एक दूसरे का बोझ उठाओ और इस तरह तुम मसीह की व्यवस्था को पूरा करोगे। यदि कोई यह सोचता है कि वह कुछ है जबकि वह कुछ भी नहीं है, तो वह स्वयं को धोखा देता है। हर एक को अपने कर्मों की परीक्षा करनी चाहिए, तब वह किसी और से अपनी तुलना किए बिना स्वयं पर गर्व कर सकता है, क्योंकि प्रत्येक को अपना भार स्वयं उठाना चाहिए। जो कोई भी शब्द में शिक्षा प्राप्त करता है, उसे अपने प्रशिक्षक के साथ सभी अच्छी बातें साझा करनी चाहिए। कंपाइलर की टिप्पणी, एक बार बचाए जाने पर हमेशा बचाया जाता है के सिद्धांत में पॉल की उन लोगों को सलाह जो आध्यात्मिक हैं, उन्हें धीरे से उसे बहाल करना चाहिए, एक गलत बयान है, क्योंकि पुनर्स्थापना अनावश्यक है, क्योंकि वे हमेशा बचाए गए राज्य में होते हैं और उन्हें बहाल करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। टिप्पणी समाप्त करें। धोखा मत खाओ, भगवान का मजाक नहीं उड़ाया जा सकता। एक आदमी, एक गलाटियन ईसाई जो पाप का बीज बोता है, उसे विनाश मिलेगा, वह जो बोता है वही काटता है। जो अपने पापी स्वभाव को प्रसन्न करने के लिए बोता है, वह उस स्वभाव से विनाश काटेगा। जो आत्मा को प्रसन्न करने के लिए बोएगा, वह आत्मा से अनंत जीवन काटेगा। आइए हम भलाई करने में हियाव न छोड़े, क्योंकि यदि हम हार न माने तो उचित समय पर फल काटेंगे। इसलिए जब भी हमें अवसर मिले, आइए हम सभी लोगों का भला करें, विशेषकर उन लोगों का जो विश्वासियों के परिवार से हैं। गलातियों के मुख्य बिंदु। मूसा के द्वारा की गई वाचा तब पूरी हुई जब मसीह की वाचा स्थापित हुई। आप प्रतिस्पर्धी अनुबंधों के लिए बाध्य नहीं हो सकते, किसी को अनुष्ठान या विश्वास के बीच चयन करना होगा। एक ईसाई जो अपने पूर्व पापी जीवन में लौटता है, उसे एक पापी का इनाम मिलेगा जब तक कि वह वापस नहीं लौटता, पश्चाताप नहीं करता और क्षमा नहीं मांगता।